Om Namah Sitebhya. Om Namah Sitebhya. Om Namah Sitebhya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Sauvasamuvam. अभी हम यहाँ प्रयोजनभूत सात तत्व संबंधी कुछ जानकारी ले रहे हैं। पहले हमने सात तत्वों का स्वरूप जाना था, अब उसकी विपरीत मान्यता क्या होती उसका भी स्वरूप देख रहे थे। आपका कुछ प्रश्न था ना रमेश भाई, अभी कुछ पूछ रहे थे आप।
तो जो कर्म का आप अभी आपने क्या बांधा,
हाँ,
तो उदय में कितना नजीक में
हाँ, देखिए आपका ऐसा प्रश्न है, कर्म बंधने के बाद नजदीक से रंग दे, अर्लीएस्ट कब उदय आ सकता है? जब कर्म बनता है तो उसमें स्थिति बंध भी होता है, कषाय के अनुसार स्थिति बंध होता है। जितना कषाय ज्यादा उतनी लंबी स्थिति बांधते हैं। लंबी स्थिति का अर्थ होता है उसके मैक्सिमम कितने काल तक उसका उदय चलेगा, उसको लंबी कहेंगे। एक समय में अनंत परमाणु बनते हैं, परंतु हरेक परमाणु में अलग अलग स्थिति पड़ती है, तो उसका अर्लिएस्ट उदय आने वाले जो परमाणु उसको हम निषेक कहेंगे, पहला निषेक एक लॉट, वो कब उदय में आएगा और अंतिम लॉट कब आएगा? तो पहला लॉट है उसको पहला निषेक कहेंगे और अंतिम निषेक है, तो प्रत्येक समय में एक एक निषेक तैयार हो जाता है। तो वो पहला निषेक कब आता है उदय में, उसमें स्थिति कितनी पड़ती है? तो मान लेते हैं जिसने 70 कोड़ाकोड़ी सागर का जो मिथ्या तो बांधा है 70, उसका आबाधा काल जितने में निषेक नहीं है
नहीं।
वो काल है उदय नहीं होगा, वो है 7000 वर्ष उसके लिए, यानी एक कोड़ाकोड़ी के लिए 100 वर्ष, ये उसका अनुपात है, उसका प्रोपोर्शन है। उसके बाद वो पहला निषेक खिरेगा, फिर दूसरे समय में दूसरा, तीसरे समय में तीसरा, एक समय में बंधने वाले कितने समयों तक खिरेगे? 7000 वर्ष और एक समय से लेकर कंटिन्यूस एक एक समय में 70 कोड़ाकोड़ी सागर के जितने समय है, समय हो, और हर समय में उसमें से कितने अनंत लिए होंगे कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतने काल में हो जाएगा।
और सब समय जो उदय में आते हैं, सब समय वो जो फल देते,
हाँ, अब ऐसा है ना, अभी हम एक समय में बंधने वाले की बात की, बंधने के बाद एक आवली काल के बाद ये जो 7000 वर्ष और ऊपर के निषेक है ना, उसमें से कुछ परमाणु उसकी स्थिति घटकर उदय आने योग्य हो जाते हैं, आ सकते हैं। अन्य जो, क्योंकि पूर्व में बंधे हुए तो वहां पड़े हैं, उनका उदय चल रहा है, तो एक समय में बंधे हुए का डिस्ट्रीब्यूशन इतने सालों में हो जाता है। पहले जो ऑलरेडी बंधे थे, जिसकी जिसकी मैच्योरिटी आज है, कोई हो सकता है हमने कोड़ाकोड़ी सागर वर्ष पहले बांधे थे, कोई हजार वर्ष पहले बांधे थे, और कोई एक सागर वर्ष पहले बांधे थे, कोई लाख वर्ष पहले बांधे थे, कोई 50 वर्ष पहले भी बांधे थे और उदीर्ण होकर उसकी भी उदय हुआ, तो सबका फल एक समय में मिलता है,
इकट्ठा
फल। उसकी जो कोई इंटेंसिटी होगी एग्रीगेट, जो हम अलग अलग समयों में डिपॉजिट करते बैंकों में, जिसकी जिसकी मैच्योरिटी उसी दिन है, उसका हमको एग्रीगेट उसका सब मिलेगा उस दिन, ऐसे उसका फल मिलता है। यानी ये जो कर्म बांधने के बाद उसमें उदीर्णा होती, उदीर्ण है ना, जल्दी उदय में आने योग्य हो जाना, क्योंकि पूर्व में बंधे हुए और पूर्व में जो उदय हो रहा है उस कर्मों के साथ ये भी नीचे आकर अपकर्षण होकर उसका उदय होता है, यानी हो सकता है। अब उसमें बहुत सारी बातें, संक्रमण भी होता है, उदीर्णा भी होती है, यानी वो अन्य अन्य प्रकृति रूप होते रहते
हैं।
लोकराज वो तो बता दिया, अर्लीएस्ट कब हो सकता है? एक आवली काल के बाद अर्लीएस्ट हृदय में आ सकता है, परंतु उसमें बहुत सारे यानी उसके नियम होते हैं, कौन सा आएगा, कैसा होएगा, उसकी क्या क्या जरूरत होती है, परंतु आ सकता है अभी।
हाँ,
जैन तत्व परिचय में
वीर्य से जीवनो गुण है।
हाँ,
वीर्य एटले बल, शरीर नु बल ते जीवना वीर्य गुण नु कार्य नथी। वीर्य गुण नी पर्याय नु नाम छे पुरुषार्थ, और बाद में एन में आत्मा नो स्वभाव तो छे तेवो अनादि थी छे, पण ती स्वभाव नो निर्णय करो तो एनी उसकी जो विभाव पर्याय है वो वीर्य गुण के साथ लगी हुई होती। मोक्ष तरफ ले जनारो आपणे
प्रश्न तो पत्रांक कौन सा है? पत्रांक नंबर
भाई भाई पेज नंबर
नहीं नहीं पेज नंबर नहीं है
17th
पत्रांक है।
हाँ जी, जो यहाँ लिखा है ना कि आत्मा नो स्वभाव तो ते वो अनादि छे, पण आपणे लौकिक पुरुषार्थ कहीये ते विभाव छे।
हाँ,
कारण तेने लीधे संसार नु पोषण थाय छे। बट ये विभाव पर्याय हुई।
हाँ,
वो वीर्य गुण की पर्याय हुई।
कौन सी? विभाव रूप भी
या विभाव रूप।
हाँ,
लेकिन अन्य गुण की भी विभाव रूप पर्याय हो सकती, वीर्य गुण के सिवा भी, राइट?
हाँ,
तो ये विभाव पर्याय है, वही अकेली वीर्य गुण की पर्याय नहीं है।
देखो देखो, वीर्य गुण की पर्याय क्या है, ऐसा अपना सवाल है।
जो ये यहाँ
वीर्य जीव का विशेष गुण है।
हाँ जी,
तो गुण है तो उसका कार्य हर समय चलेगा,
राइट?
यानी अनादि से वीर्य गुण का कार्य तो चल रहा है। देखो उसका कार्य क्या चल रहा है, जैसे अभी हम कहते हैं ना, जीव कुछ ना कुछ जान रहा है, निगोद वाला जीव भी जान रहा है। तो उसकी जो ज्ञान की पर्याय है उसमें दो निमित्त कहे जाते हैं, एक ज्ञानावरण का क्षोभषम और एक वीर्यांतराय का क्षोभषम। वो वीर्य नाम का जो गुण है तो वीर्यांतराय कर्म है, उस पर अंतराय यानी वो कुछ बाधा डालने वाला, यानी जीव का जो वीर्य है पुरुषार्थ यानी कोई भी पर्याय है वो प्रकट करने का बल, कोई भी द्रव्य अपने स्वयं की पर्याय प्रकट करता है, वो कोई अन्य आकर उसकी पर्याय पलटा रही है ऐसा नहीं है। तो वो विभाव पर्याय हो या स्वभाव पर्याय हो, जीव अपने स्वयं के बल से करता है। जब जब हम पुरुषार्थ करो कहते हैं तो मोक्ष के पुरुषार्थ का उपदेश है, परंतु जीव जो मिथ्यात्व कर रहा है वो अपने स्वयं के बल से कर रहा है। शुभ भाव कर रहा है उसमें उसका स्वयं का पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा? शुभ भाव का पुरुषार्थ। उल्टी मान्यता का पुरुषार्थ ऐसा लगा है, ये तो सारा विभाव होगा। और स्वभाव कब कहेंगे? सही मान्यता रूप पुरुषार्थ चल रहा है, सम्यक ज्ञान रूप पुरुषार्थ चल रहा है, केवल ज्ञान होने पर कहेंगे केवल ज्ञान का पुरुषार्थ चल रहा है। तो जिस वहां तो स्वभाव पर्याय की बात है, पुरुषार्थ जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं, वो तो है स्वभाव पर्याय। तो स्वभाव की रचना पर्याय में करना
वही
ये पुरुषार्थ है, यही वीर्य गुण का कार्य है। परंतु हम विभाव रूप अवस्था है, अनादि से मिथ्या तो है, तो क्या वीर्य गुण सोया है?
नहीं,
उल्टा पुरुषार्थ कर रहे। उल्टा क्योंकि मोक्ष से उल्टा है, परंतु उस पर्याय का वैसा ही विभाव रूप उसका पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ यानी उसका बल, उसका कार्य, जो कार्य हो ना, पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद, यही तो पुरुषार्थ है। ये अपने पुरुषार्थ से हो रहा है। पूर्व पर्याय जो है मिथ्यात्व का व्यय और सम्यक्त्व का उत्पाद, ये जो कार्य हुआ, दोनों ही कार्य है ना, व्यय ये भी कार्य है, उत्पाद भी कार्य है, ये किसने किया? द्रव्य ने स्वयं किया। तो वहां वो फोर्स कहाँ से आया? वो पुरुषार्थ द्रव्य का स्वयं का पुरुषार्थ है। अभी हम ये तो यहाँ तो जीव की बात की, ये सभी द्रव्यों में घटित होगा।
हाँ जी,
सोना है बंगड़ी रूप परिणमित हुआ, हमने कहा वो हमारा कारीगर है ना, उसने किया, सोने ने किया, तो सोने में उस पर्याय रूप से परिणमने की स्वयं की योग्यता है, और उसमें सोना स्वयं उस रूप हुआ है। हमारी दृष्टि तो बाह्य की ओर है, बाह्य में किसने किया ऐसे हम देखते हैं, ख्याल है ना, वो सोने का ऐसा विचार आया, उसने ऐसा वो डिजाइन बनाया, वो सब कार्य होते हुए दिखते हैं, परंतु हमें तो निर्णय करना है कि ये कार्य हुआ कहाँ पर।
हर एक द्रव्य में वीर्य गुण है,
यही तो बता रही हूँ मैं। पुद्गल में भी ये जो कार्य हो रहा है, मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई, ये उसका अपना पुरुषार्थ लगा उसमें, क्योंकि प्रत्येक कार्य में 5 समवाय लगते हैं। एक है स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त। तो हमें तो ये सारे ही स्वद्रव्य में होते हैं, चार समवाय तो स्वद्रव्य में लगते हैं और ये निमित्त तो परद्रव्य है, परद्रव्य की पर्याय है। हमें तो ये नीचे शक्ति दिखाई नहीं देती, निमित्त आया तभी कार्य हुआ ऐसा लगता है, परंतु कार्य क्यों हुआ? क्योंकि उसकी काल लब्धि थी वही, उसी समय होने की। वही पर्याय क्यों हुई? क्योंकि वही पर्याय उसी समय होने की उसकी योग्यता थी। वो किसने की पर्याय? पुरुषार्थ ने की, द्रव्य ने स्वयं की है, वही उसका पुरुषार्थ है। क्योंकि द्रव्य में ऐसा स्वभाव पड़ा है इसलिए की है। द्रव्य में अपने अनादि अनंत कौन सी पर्याय करनी है, ये स्वभाव द्रव्य में विद्यमान। तो ये चार कारण तो दिखाई नहीं देते, एक निमित्त ही दिखाई देता है। तो हमने निमित्त को पूछा आप क्या कर रहे, तो वो कहता मैं अपना कार्य कर रहा हूं, और वो भी अपने स्वयं के वो उसके कारण होगी, उसके स्वयं की योग्यता से उस समय हो रहा है। हमारे कहने से निमित्त कोई कार्य नहीं कर रहा है, परंतु देखो बाह्य दृष्टि वाले को तो यही दिखाई देता, ये दिखाई नहीं देता। ये तो हमें भगवान ने बताया है, उन्होंने स्वयं जाना है और बताया है। तो कौन सी भी पर्याय किसी भी समय होनी है, वो उस द्रव्य की अपनी योग्यता से उसी समय होगी। समय भी चेंज नहीं होगा और वो उस समय होने वाली पर्याय भी नहीं चेंज होगी। तो इतना अगर हम जानते हैं तो अभी हमें स्वयं की पर्याय पलटाने का कष्ट करना है, चिंता करनी है कि दूसरे की पर्याय पलटाने की चिंता करनी है?
ऐसे स्वयं की, लेकिन वो भी अपने आप
बहुत अच्छा। हमारी भी पर्याय सुनिश्चित है और पर की भी सुनिश्चित है। करने का भाव आना वो अलग बात है, परंतु पहले श्रद्धा में तो लो, निर्णय तो करना है ना। हमको पलटा सकते ही नहीं हम, चाहे तो भी हम व्यर्थ इच्छा करने से क्या होगा? इच्छा तो स्वयं दुख रूप भाव है। तो हम अपनी पर्याय पलटाना चाहते हैं, पर की पलटा अपनी ने हम तो अपने को अपना समझा ही नहीं है। अपनी मानकर हम शरीर की पर्याय पलटाना चाहते हैं। मैं रोगी हूं मुझे ठीक होना है, किसकी पर्याय पलटाना चाहते हैं? अपनी के पर की, पर की उसको हमने अपनी समझ ली। हमने अपने को मनुष्य मानकर ये सारे हमारे कर्तव्य निश्चित किए हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं पिता हूं, मैं माँ हूं, ये मेरे कर्तव्य है। परंतु कभी ऐसा नहीं समझा कि मैं जीव हूं और ये मेरे कर्तव्य है। यही भूल हो गई। मैं जीव हूं तो मेरे कर्तव्य क्या है? हम जिसमें मैं स्थापित करते वैसे हमारे कर्तव्य भी बदलेंगे। यही है ना, जीव अजीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता चल रही है। कल ही मैं वो पुस्तक पढ़ रही थी, आपने दिया ना वो, नहीं यहां से निकाला, वो शशि भाई का, उन्होंने कुछ कलेक्शन लिया है, उसमें लिखा है कि बहुत बड़ा समुद्र है और बीच समुद्र में बीच में जाकर नाव डूबने लगी है, उल्टी हो गई अभी, यानी वहां वो पानी में गिर गया। तब समाज की चिंता करनी कि नहीं करनी? अरे अभी डूब कर मरने वाला है, समाज का विचार भी नहीं आएगा। मैं कैसा बचू ऐसा? तो समाज को अच्छा दिखने के लिए मुझे हाथ जोड़ना है, ये कहाँ रहता है वहां पर, ख्याल है ना? देखो हम उसकी सिवियरिटी समझते नहीं कि हम कहाँ पड़े हैं। ये मनुष्य भाव कितना दुर्लभ में दुर्लभ है और हम किसको हमें ठीक लगाना है। ये महापुरुषों के चरित्र भी हम पढ़ते हैं तो दूसरों के दिखाने के लिए वो अपना जीवन व्यतीत करते कि कैसे जल्द से जल्द अपना कल्याण हो सके, इस बात का विचार करना है। हम फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, बाल बच्चों के लिए, इसको ठीक लगे, उसको ठीक लगे, उसको, अरे इसमें अपना जीवन, जितनी आयु लेके आए हैं उसमें एक समय की भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। हो सकता है कदली घास से मर जाए कोई जल्दी, परंतु आयु बढ़ने वाली तो नहीं है। तो जितनी आयु है उसमें से अधिक अपना कल्याण किस तरह से कर सकते, इस तरह से हमें उसको सोचना है और ये सारे विचारों में लेना है। कितने के हमको कुछ समय नहीं मिलता, समय नहीं होते हुए को इसमें कार्य किसका है निश्चित करना है। रोटी बनाते समय रोटी वहां बेली जा रही है तो ये बेलन का क्या कार्य अलग है, मेरा कार्य अलग है, मैं तो जानने वाला, मैं जानने वाला ज्ञायक हूं, ऐसा विचार 24 घंटे चलेगा, नींद में भी चलेगा, क्योंकि इसकी जिसको इतनी रुचि लगी है नींद में यही रटन चलता है। कुछ ना कुछ पुस्तकें पढ़ेगा, कुछ ना कुछ ये बातें चलेगी, उसके विचारों में यही आएगा। तो विचार अभी ड्राइव कर रहा है, रोटी बना रहा है, व्यापार धंधा चल रहा है, आपको दवा खाने में कुछ प्रिस्क्रिप्शन कर रहे, पेशेंट को देख रहे, हर जगह मैं तो जानने वाला हूँ, ये बात ये विचार हम मुख्य रख के सब कुछ क्रिया चलती रहती है। उसके लिए हमको टाइम नहीं मिलता, एक घंटा निकालना है, चार घंटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मीडिया भी कितना हो गया ना, आपके कैसेटे हो गए, आप ड्राइविंग करते हुए करते भी सुन सकते हैं। अकेले सुनने से भी नहीं होगा, अकेले पढ़ने से भी नहीं होगा। अब ये जो पढ़ते हैं वो विचारों में लेने की बात है। हम कहेंगे एकांत में बैठना है, जब हम अपने विचारों में खो जाते वो एकांत ही है। जो शेख चिल्ली करता है ना, शेख चिल्ली समझते ना, मनोरथ के थे, ऐसे सोचते आ रहे मैं वो, हम बचपन में एक कथा सुनते ना, एक कोई गरीब आदमी था,
घी का घड़ा,
हाँ घी का घड़ा, वो तो कुछ फिर मैं मेंढी लाऊंगा, फिर मैं इतनी गाय करूंगा, इतना दूध आएगा इतना, फिर वो उसका माखन जमाऊंगा, घी करूंगा, ये यहाँ घी लटकाऊंगा, और फिर वो बीबी आएगी, वो मेरे पैर दबाएगी, मैं उसका लात मारूंगा, तो लात मारता है तो घी का घड़ा फूट जाता है। शेख चिल्ली, तो उसको कितना एकांत चाहिए। हम चाहे जहाँ अपनी शेख चिल्ली शुरू हो जाती है, विचारों में खो जाते हैं ना, तो ये तत्वों के विचार में खो जाना, मग्न हो जाना, इसी से अपना उस संबंधी निर्णय चलेगा। ये एकांत देने सब दरवाजे बंद करो और फिर हाथ जोड़ के बैठ जाओ, ये बात नहीं है। अरे समय तो बैठ जाओ शांति से, मगर ये हर समय चलेगा। अभी जो हम विपरीत मान्यता देख रहे हैं सात तत्व संबंधी, तो क्या हमारी मान्यता ऐसी है कि नहीं है, इस संबंधी हम विचार कर सकते। फिर अभी हम सही मान्यता देखने जा रहे हैं, तो उस समय भी हम सोच सकते उस पर, तो वो जानकर उससे सोचने से अपनी मान्यता बदलेगी। उसके लिए कुछ क्रिया की कोई उपदेश ही नहीं पहले में, पहले हम देखिए अभी आगे हम, ये तो आपके प्रश्न थे दो, उसके हम देखते हैं। कल हमने मोक्ष तत्व संबंधी भी विपरीत मान्यता बात देखी थी, तो यहां कहते हैं कि जहां एक तत्व के बारे में भूल है, मुख्य में मुख्य मैं जीव हूं इसके बारे में उसके संदेह, उसकी भ्रमणा चल रही, तो जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल जिसके है उसके सभी तत्वों संबंधी भूल चलती है। क्यों? अब मैं मनुष्य हूं मान लिया, यानी शरीर और मैं मिलकर मैं माना, ये मूल में भूल है। देखो हम देखते हैं, कुम्हार के पास घड़े होते हैं ना, एक औंधा रखा उल्टा, और उसको बहुत घड़ोंगे इसे रास करनी है, तो कैसा करने पर, आपके घर में कटोरी होती है, हम लगाते हैं ना इसे कांच की कटोरी, ऐसे डिस्प्ले करते हैं, एक उल्टी रखी, उसके बाजू में दूसरी तीसरी, फिर उसके ऊपर कैसे रखेंगे,
उल्टा ही
रखना पड़ेगा, तभी उसके वीकेंड में कहीं, तो ऐसे पहले एक मान्यता उल्टी होती है ना, तो सभी मान्यताएं उल्टी हो जाती है। मूल में भूल, मैं कौन हूं, मैं अजीव को ही अजीव मान लिया, मैं मान लिया, तो उसके सारे आगे की बातें वैसे ही चलती है। मैं शरीर, यानी ये शरीर ही मैं हूं, फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या अनुकूल है, फिर ये राग द्वेष की भी चलती चलेगी भट्टी सब। ये जिसको एक तत्व के मानने में भूल है, उसके सातों तत्व संबंधी विपरीत मान्यता चलती रहती है। अब कहते शास्त्र सुनने वालों का हमेशा यही सवाल होता है, पत्रांक 23 में हम, एक दो तीन चार चौथे पेज पर चल रहा है,
151।
शास्त्र सुनने वालों का हमेशा यही सवाल होता है कि फिर हम क्या करें, कैसे आचरण करें। क्या प्रश्न होता है,
क्या आचरण करें,
यानी हम क्या करें, क्या कर सकते, इसका निर्णय नहीं हुआ है अभी। अभी भी प्रश्न क्या है, तब तक हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए। देखो प्रश्न में भी कर्ता बुद्धि ही दिखाई देती है। गत दोनों पत्रों में हमने मान्यता की भूल देखी, परंतु फिर भी मान्यता को सुधारना है ऐसा सीधा सरल जवाब ध्यान में नहीं आता, यानी मान्यता सुधारना ये कुछ करना नहीं लगता, तब तक हम क्या करें। कोई गिर जाता है, फिसल जाता है केले के छिलके से, तो उसको क्या करना चाहिए,
हाँ ऊपर उठना
उठना चाहिए। जब तक उठता नहीं तब तक क्या करना चाहिए? उठने का प्रयत्न करो, ख्याल है ना। तब तक क्या करना, ऐसा ये सवाल है। पहले में पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है, मान्यता में भूल थी, मान्यता सही करनी चाहिए। कैसे? क्योंकि सही हमने जाना है ग्रंथों से, तो सही जानने से ही मान्यता सुधर जाएगी। तो वो कुछ करना इसको लगता नहीं है। तो कहते कि क्या मानता है, मनुष्य पर्याय ही मैं हूं, मैं मनुष्य ऐसा मानकर मनुष्योचित यानी मनुष्य को योग्य ऐसे व्यवहार सुधारने का विचार करता है। यानी मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, तो मुझे अभी कैसा बिहेव करना चाहिए। प्रश्न क्या पूछ रहे, तो क्यों बच्चों का कुछ नहीं करे? अभी बापू जी ने कथा सुनाई ना सबको निकाल बाहर कर देना, क्योंकि अपने आत्मा का करना है। यानी उसकी जीव अजीव और आश्रय तत्व संबंधी भूल वैसे ही चल रही है। क्या है? जीव और अजीव मिलकर मैं हूं, और कुछ करना चाहता है ना। चाह क्या है? इच्छा हुई ना उसकी, शुभ या अशुभ करना चाहता है। तो हमको शुभ तो करना चाहिए ना। इन्हें जीव और आश्रव को एक माना उसने, आश्रव जीव का कर्तव्य माना, आश्रव से मैं भिन्न हूं ये जानना था। ये सब सोचने में, ज्ञान में और विचारों में लेने की बात है। वो पहले में पहले शरीर का आचरण सुधारने की बात करता है, कुछ करने की बात करता है, परंतु शरीर भिन्न है मेरे से, और जो राग द्वेष के परिणाम उठ रहे वो भी आश्रव तत्व है, वो भी मेरे से भिन्न है। हरेक को जुदा जुदा जानना है, किसी को पहले बाहर नहीं निकालना है। हम पहले कोशिश क्या करते हैं, मैं कुछ करूं, क्या करूं, शरीर की क्रिया, उपवास करूं के यात्रा करूं के दान देव का कुछ करूं, पूजा कैसे करनी चाहिए बैठ करके उठकर, ऐसे ऐसी चर्चा चलती है। परंतु ये शरीर की क्रिया मेरे से भिन्न है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा विचार में नहीं लेता, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात थी। सम्यक दर्शन होने के बाद भी उसकी क्रियाएं तो चलेगी, शुभ अशुभ भाव भी चलेगे, परंतु अब उसमें उसका एकत्व नहीं रहेगा। इसको भेद ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे भेद ज्ञान, ऐसे विचार तो उसके हर समय चलेगे, 24 घंटे चलेगे। आप कहते हैं हमारे हर बार तो विचार नहीं आते, होता है ना, तो शुरू शुरू में नहीं आएंगे। जब इसकी लगनी लगेगी, जब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास है ना, बारंबार उस पर विचार करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और उसमें रुचि हो जाएगी, तो जिसमें रुचि होती है वैसे ही विचार आएंगे। हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, तो अभी क्या करना, क्या बनाना, क्या मेन्यू रखना, कैसे कैसे करना, उसके विचार आते हैं ना। तो जब इसकी हमारी रुचि बढ़ जाती है तो इसी के विचार आते हैं। अन्य कार्य करते हुए भी विचार इसके चलते हैं, नहीं तो विचार क्या कैसे आएंगे, उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा कहना चाहिए। वहां तो कुछ किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, सुन लेता है ना और मन ही मन में सबसे के साथ झगड़ा चलता है। ये संगी पंचेंद्रिय जीव मन के द्वारा जितना पाप करता है, देखो संगी पंचेंद्रिय जीव को मिथ्यात्व का बंध कितना लंबा हो सकता है, अभी हमने देखा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, और एक इंद्रिय को 1 सागर
तो एक इंद्रिय होना अच्छा कि नहीं
एक सागर की स्थिति बनती है मैक्सिमम उसकी, फिर भी उसमें उसी में वैसे भाव होता है, एक इंद्रिय संबंधी बंध करता है, उसके भाव कलंक है उसकी प्रचुरता। परंतु ऐसे लंबी, जैसे हम अनंत अनुबंधी का बंध कितना कोड़ा कोड़ी सागर का करेंगे, मिथ्या दृष्टि जीव है, 4 कषाय चौकड़ी बनती है, 16 कषाय होते हैं ना, 4x4, उनकी स्थिति कितनी होती है, अधिक से अधिक 40 कोड़ा कोड़ी सागर। और एक इंद्रिय कितना बांधेगा, 4/7 4/7 4 सप्तमांश सागर उसकी उतने प्रोपोर्शन में। तो एक इंद्रिय अच्छा ना उसके योग्य वहां वैसे संकलेश चलते हैं। ये हमारा पाप तो मन के द्वारा ही सबसे अधिक होता है, जो जानने के निमित्त था, जाना हमने, पर जानकर क्या किया, राग के साथ एकत्व कर दे, और अपने कल्पना में ही हम झगड़ते चलते, कल्पना में खड़ा कर देते हम पॉसिबिलिटीज, और उसमें हम राग द्वेष बढ़ाते। मन के द्वारा राग द्वेष नहीं करते, मन तो जानने में निमित्त है, इंद्रिया तो जानने में निमित्त है। जैसे एक इंद्रिय एक सागर का बंद करता है और द्विइंद्रिय जीव 25 सागर का करता है मैक्सिमम। उसके एक इंद्रिया बढ़ गई ना, परंतु इंद्रिया तो ज्ञान में निमित्त है। जो जाना उसको उसने किसमें, उसमें इष्ट अनिष्टपना कर दिया। पहले तो स्पर्शन संबंधी कोई इष्ट अनिष्ट था, अब स्पर्शन और रसना संबंधी इष्ट अनिष्ट चल रहा है। तीन इंद्रिय जीव को अधिक से अधिक 50 सागर का बंद होता है, चौ इंद्रिय को 100 सागर का, असंगी को 1000 सागर का, और संगी पंचेंद्रिय को 70 कोड़ाकोड़ी सागर का। ये ऐसा स्वरूप है। तो मनुष्य है ना, मन चारों गति में संगी पंचेंद्रिय, और यहां आकर भी हम उसमें से नहीं चेते हैं, तो ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। देखो अभी यहां क्या कहते हैं, यानी मैं मनुष्य हूं ये मान्यता, मनुष्य होते हुए मैं जीव हूं ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं सकते? तो मनुष्य की जो जिम्मेदारियां वो सब निभाते रहेंगे हम, फिर भी हमारी विचारधारा मैं ज्ञायक हूं जानने वाला तत्व हूं ऐसी चल सकती है ना, क्योंकि वे हम है स्वयं, जो नहीं हूं उस रूप मान रहे जन्म से ही। मैं मनुष्य तो मैं नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो जीव हूं, मैं तो एक जीव हूं, और यहां अनंतानंत पदगल परमाणु आकर यहां शरीर रूप बने हैं। तो मैंने मान लिया कि यह मैं हूं, यह मैं मनुष्य हूं, तो मैं जीव से मनुष्य तो नहीं हुआ है, ख्याल में आता है ना? तो ये जो लौकिक उपचार चलता है, मैं मनुष्य हूं ये मेरे वो तो चलते रहेंगे अपने, परंतु जब हमने निश्चित कर दिया कि मैं जीव हूं, जो मैं सचमुच हूं, जो सच है सत्य है, उसको स्वीकार करने में क्या डिफिकल्टी क्या है? कुछ नहीं है, ये सबसे इजी बात है, सबसे सुगम है, सबसे सरल है। जो नहीं हो सकता उसको हमने मान लिया है, मनुष्य रूप या देह रूप तो हम हुए ही नहीं कभी, तीन काल हो भी नहीं सकते, फिर भी मान लिया कि मैं देह रूप हूं। और एक मान्यता उल्टी है तो सारी मान्यता उसके अनुसार चलती है। यानी ये क्या कर रहा था, मान्यता की भूल कायम रखते हुए आचरण सुधारना चाहता था। अब उसके लिए एक उदाहरण दिया है। एक आदमी जमीन पर झुककर कुछ कर रहा था, हम कुछ जा रहे थे और एक आदमी ऐसे यहाँ रास्ते पर बैंड होकर बैठकर कुछ कर रहा था,
खाली ऐसा।
उससे उसके मित्र ने पूछा, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? उस पर उसने जवाब दिया, मैं कब से मेरी परछाया छाव शैडो जो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है उसे सीधा करने की चेष्टा कर रहा है। क्या प्रयत्न कर रहे हैं? बैठकर वो परछाई को उठाने, क्यों वो बैठा है तो परछाई भी वैसी दिख रहा है ना, तो उसको वो सीधी करना चाहते। तो परछाई सीधी कैसे हो जाएगी?
वो सीधा हो जाएगा।
अरे इतना सरल है ना। तो कहते तुम क्यों हंस रही हो? ये तो मैंने लड़कियों को पूछा, ये तो पढ़कर भी हंसी आई ना उसको, तो दूसरों की मूर्खता देखकर कैसे तुरंत हंसी आती है। तो मित्र ने सलाह दी, परछाया सुधारने की कोशिश मत करो, तुम सीधे हो जाओ तो परछाया अपने आप सीधी हो जाएगी। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान हमारे सुहृदय, सुहृदय ने मित्र है, परम मित्र है। क्या कहते हो, हम भी क्या चेष्टा कर रहे हैं? वो जैसे परछाई सुधारने की चेष्टा करते थे, हम भी पर्याय से यानी शरीर से एकत्व करके मनुष्य व्यवहार यानी आचरण सुधारने की चेष्टा यानी प्रयत्न करते हैं। उस समय हमारे परम सुहृद यानी परम मित्र अर्थात देव शास्त्र गुरु हमसे कहते हैं, हे भव्य तुम अपने को पहचानो। उसको सीधा होने को बोला था, खड़ा होने को, पर्यायों की तरफ देख देख कर उनमें से विभाव और राग द्वेष दूर करने का प्रयत्न छोड़ दो। क्या कहा? राग द्वेष को नहीं छोड़ना, तो कहते उसको छोड़ने का प्रयत्न छोड़ दो, राग द्वेष विभाव कम करने का प्रयत्न छोड़ दो। तो क्या करना, तुम स्वयं अपने आप को स्वभाव रूप मानो। हमने क्या कहा, मेरे में कमी है और मुझ में कमी दूर करनी है, उस दिन बोला ना उन्होंने। तो अपने को वो कमी रूप, वो राग द्वेष रूप मत मानो। किस रूप माना है? मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो उस रूप अपने को मानो, स्वयं को स्वयं में स्थापन करो। हमने अपने को कहां स्थापन किया है? शरीर में और विभावों में। विभाव रूप मैं हूं, शरीर रूप हूं, ऐसा हमने स्थापन किया है, अपने मान लिया है। तो कहते हैं स्वयं को स्वयं में स्थापित करो, जो स्वयं तुम हो, ज्ञान दर्शन मैं, आत्म तत्व, जीवास्थि काय, असंख्यात प्रदेशी ऐसा जीव द्रव्य, वो तुम हो। तब तुम्हारी पर्याय अपने आप स्वसन्मुख होकर स्वभाव रूप परिणमन करने लगेगी। तो अपने को किस रूप मानना है? मैं तो स्वयं सर्वज्ञ स्वरूप हूं, सर्वज्ञ स्वभावी हूं, मैं तो स्वयं जीव तत्व हूं। अभी तत्वों की भाषा में बोलेंगे ना, हमने सात तत्वों का स्वरूप समझ लिया है। पर्याय में आश्रव है, बंध है, सब कुछ है, यहां अजीव तत्व भी पड़ा है शरीर रूप से, परंतु मैं उस रूप नहीं हूं, मैं तो अनादि अनंत कायम रहने वाला जीव तत्व हूं। अपने को स्वरूप रूप स्वभाव रूप से स्थापन करेंगे तो अपने में ही जो पर्याय उठ रही है नई नई, जो आगे आगे वाली समय की पर्याय होगी, वो कैसे होगी? वो भी अपने को जानती हुई प्रकट होगी। यानी वो पर्याय में ही ऐसा हमें भासित होगा कि मैं तो जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। तो इसलिए ज्ञानी भी कहते ना, तुम परमात्मा छो एम पहला नक्की कर। तो जिसने अपने को परमात्मा स्वरूप पर्याय में नहीं हो, स्वभाव में, हाँ, नहीं तो ऐसे भी कितने हैं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो आनंद ही आनंद हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो वाली बात नहीं, मैं स्वभाव से परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसा जब नक्की करेंगे तो पर्याय में जो हीनता है, जो विभाव है, वो निकल कर स्वभाव रूप पर्याय प्रकट होगी। तो सम्यक दर्शन होगा, स्वभाव रूप पर्याय होगी, यानी क्या? सम्यक दर्शन होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा, और वहां से वितरागता की शुरुआत होगी, धर्म की शुरुआत होगी। इसलिए सात तत्वों के द्वारा तो हमें अपना स्वरूप निश्चित करके जीव तत्व है उसका आश्रय लेना है। अभी तो हमने सात तत्वों का विपरीत मान्यता क्या है वो भी देखी, सात तत्वों के लक्षण भी देखे हैं। तो ये जो ऐसे अनादि से मान्यता है तो भी क्या करना है, उसके ये भूल मिट सकती है। कैसे? स्व कौन सा तत्व है उसको पहचानना है, और उसी में लीन होना है ना, उसी को जानते रहना। लीन होना है ना, क्या करना है, वो कैसे अंदर जाना बाहर जाना, अंदर बाहर कुछ नहीं, अरे मैं उस रूप हूं, ये स्वीकार करना है। जब हमने अपने को निश्चित किया मैं स्व हूं, तो फिर उसको बताने की जरूरत नहीं है कि अभी ये तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना। जिसको हम मैं या अपना मानते हैं, हमारे विचारधारा वैसे ही चलती है। छोटा बालक भी एक साल का है, ये मेरी मम्मी है, ऐसे उसको मालूम है, तो कोई वो मम्मी दूसरे को बच्चे को उठा दे तो कैसा रोने लगता है, क्योंकि वहां मेरेपना की उसकी भावना चल रही है। ऐसे हम मैं स्वयं जीव हूं, ज्ञायक हूं, और बाकी ये तत्व मेरे से पर है, ऐसा समझेंगे तो सारी विचारधारा ही वैसे ही चलेगी अपने आप। अब उसके लिए ये तत्वों का जो का त्यों श्रद्धान आवश्यक है। जो का त्यों ने जैसा जिनेन्द्र भगवान ने बताया है वैसा, उसके लिए तीन शब्द आते हैं, हेय, गेय और उपादेय। हेय यानी त्यागने योग्य, ये सब श्रद्धान की बात चल रही है। जब हम त्यागने योग्य कहते हैं श्रद्धान में, तो ये आचरण में से त्यागने की बात करता है। ये सब चीजें श्रद्धा के लेवल पर चल रही है, क्योंकि यहां मान्यता की विपरीतता की बात चल रही है। तो हे ने मान्यता में जो हमने उसको ग्रहण करने योग्य समझता समझा था, उसको भी छोड़ने योग्य समझना है। छोड़ने की बात जब छूटेगी तभी है। हे ये का अर्थ क्या है? छोड़ने योग्य। हमारे घर में बेटी का जन्म होता है, उसी दिन उसी समय हम क्या समझते हैं बेन, आपको पता है ना क्या क्या नक्की करते हैं?
हमारी नहीं,
ये हमारी नहीं, ये छो
आएगी,
हाँ बारात आएगी, हम कहते ये पराया धन है। पराया धन अपने घर में कितने टाइम लगते हो पराया धन?
अरे
तुरंत छोड़ देते नहीं, उसको तो अच्छी निगरानी पूर्वक उसकी यानी निगरानी रखेंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो काबिल बनाएंगे कि शी इज कैपेबल ऑफ अर्निंग, वो अपने पैरों पर खड़ा करना जिसको कहते, फिर वो योग्य काल में उसकी शादी ब्याह हो जाएगी, वो पर की हो जाएगी। नक्की कब किया था? हाँ, जन्मी तभी, अपने घर में है तभी। ऐसे ही पुण्य पाप आदि जो है ना, पुण्य को है या कब समझना, जब कर रहे तब। तो छोड़ देना नहीं, अभी बीच में नहीं छोड़ना है। कब छोड़ना है? पर छोड़ना है ये पहले में पहले नक्की करना है, उसको छोड़कर अपने स्वरूप में लीन होने योग्य है। नक्की कब किया? ये नक्की भी किया और अधिक अधिक उच्च प्रकार के पुण्य भी आते रहेंगे, फिर भी ये सब छोड़कर मुझे स्वभाव में रहने योग्य है, ये नक्की करना है, नक्की करना है और कुछ नहीं करना है। आप कहेंगे अच्छा धर्म है केवल नक्की करना है, अरे यही नहीं किया हमने, कुछ करने में ही धर्म माना। क्या करना है? यात्रा करना, उपवास करना। मैं मेरी बात करती बचपन में, 10 दिन हम मंदिर में जाते थे, पूजाएं करते थे, आरती करते थे और इसी में हमने धर्म क्या मानते थे, उपवास करते थे। दूसरी लड़कियां करते थे, हमारी माँ मेरी तुमने मत करो, क्यों नहीं करना, अरे 4 दिन उपवास करेगी तो सब प्रभावना करनी पड़ेगी अपने। हमारे अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्या करना पड़ेगा, सबको बुलाना पड़ेगा, ये इतना ये करो वो करो, सब ख्याल है ना। तो हमने क्या माना, देखा देखी किया, समझते भी ऐसा थे, अरे वो लड़की कर रही उपवास और उसको हार पहना रहे हम क्यों नहीं करें क्योंकि तत्व का अभ्यास नहीं है तो ऐसा लगता है। तो ये जो का त्यों जो है ना, हे यानी वो मान्यता में लेना है, गे यानी जानने योग्य, वो कैसा जानने योग्य हम देखेंगे एक एक तत्व पर। और उपादेय के 2-3 अर्थ करेंगे हम यहां। उपादेय एक तो होता है प्रकट करने योग्य उपादेय, उपादेय ने योग्य ऐसा कैसे प्रकट करने लायक है, या दूसरा होता है आश्रय करने लायक है। 7 तत्वों में मैं स्वयं जो जीव हूं, जीव तत्व, वो आश्रय करने लायक है और संवर निर्जरा प्रकट करने लायक है। परंतु क्या संवर निर्जरा में ही रुकना है क्या? नहीं, वो तो एक देश पार्शल, फिर पूर्ण क्या प्रकट करना है, मोक्ष। तो ये संवर निर्जरा और मोक्ष को हम उपादेय कहेंगे, क्यों? प्रकट करने लायक है। और जीव तत्व को भी उपादेय कहेंगे, क्यों? आश्रय करने लायक है। इस तरह से इनमें ये हेय गेय उपादेय की चर्चा भी हम कहेंगे तो उसको कहेंगे यथार्थ श्रद्धा, जैसे भगवान ने जिस रूप में बताया है वैसा श्रद्धा करना, उसको कहेंगे यथार्थ श्रद्धा। अभी तक हम क्या देख रहे थे, विपरीत श्रद्धा, इस जीव की कहां भूल हो रही थी उसको अभी हमने पढ़ा, उसको अच्छी तरह से जाना है। अब यहां जो का क्यों श्रद्धा ने यथार्थ श्रद्धा की बात चलेगी। देखो उसके लिए यहां एक दृष्टांत देके समझाया है। अब हम 24 नंबर का जो पत्रांक है उसमें 4th पैराग्राफ उसको देखेंगे हम। तीसरा पैराग्राफ दृष्टांत। किसी एक गांव में अनेक घर है, कई रास्ते हैं, ये रास्ते कांटों भरे हैं, कहीं उबड़े हुए इनमें कहीं गड्ढे हैं, अनेक विपत्तियों से भरे हैं, भरे पड़े हैं, परंतु सभी घर अनेक सुख सुविधाओं से भरे हुए हैं। ये घरों पर पहले पूरा दृष्टांत घटित करेंगे फिर तत्वों पर लेंगे हम। तो कहते इन घरों में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता, इन्हें परद्रव्यों की जगह यहां घरों के लिए। परंतु एक घर मेरा अपना है जिसमें प्रवेश करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, जिसमें मेरे अलावा अन्य कोई प्रवेश कर नहीं सकता। मेरा घर सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, इन रास्तों से हटकर साफ सुथरा एक मार्ग मेरी घर की ओर जाता है जिस पर चलकर मैं अपने घर में प्रवेश कर सकता हूं। इस तरह केवल बहुत सारी जानकारी हासिल करने से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये ऊपर इतना सारा बताना है, ये मेरा घर है उसमें सुख है, उसमें ये रास्ता जाता है मेरे घर में और उसमें बहुत सुख है, इतना जान लिया तो इतना जानने से सुख होगा कि नहीं होगा?
होना ही चाहिए,
केवल जानने से
नहीं, बस जानने से,
उस पर चलकर घर में प्रवेश करने से, ख्याल है ना? हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं, बहुत सारी जानकारी हासिल करने से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती, वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं कहलाएगा। क्यों? जाना कब कहेंगे, उस रूप हम जाएंगे और सुख प्राप्त करेंगे, तो दूसरों के घर एवं वहां के सुख देखकर भी हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। दूसरों के घर, जैसे सिद्ध भगवान है, अनंत सुखी है, उनको देखकर तो सुख होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि उनके सुख में हमारा प्रवेश ही नहीं है। विपत्तियों से भरे इन रास्तों पर चलते रहने से सुख की बात तो छोड़ो, दुख ही दुख नसीब होगा। ये विपत्ति भरे रास्ते ने वो आश्रय बंद, उसी पर चलते आए हैं, इन रास्तों पर चल के तो दुख ही दुख नसीब होगा। उस गांव को जानना, यथार्थ जानना तभी कहलाएगा जब मैं जानूंगा कि मेरा सुख मात्र मेरे घर में है, अन्य घरों के सुख देखने से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह विपत्तियों से भरा रास्ता छोड़कर अपने घर की ओर जाने वाला यह मार्ग ही मुझे पकड़ना होगा, इस मार्ग पर चलकर घर तक पहुंचना होगा, और घर में प्रवेश करते समय उस मार्ग को भी छोड़कर घर में प्रवेश करना होगा। इस ज्ञान के अनुसार पूर्ण श्रद्धा यानी विश्वास होने पर जब अपने घर की ओर पहला कदम उठाएंगे तो ही वह श्रद्धा और ज्ञान सच्चे होंगे। पहला कदम उठाएंगे यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तब कहेंगे वो ज्ञान सच्चा और श्रद्धा सच्ची, तब हम कहेंगे वो सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा होगी, सम्यक दर्शन हुआ। और जब घर में प्रवेश करके पूर्ण सुख का उपभोग करेंगे तभी उस श्रद्धा ज्ञान और आचरण की पूर्णता होगी। पहला कदम उठाए ने वो आचरण की शुरुआत कर दी, और जो अनंत सुखी बन जाएंगे हम, तब हम कहेंगे वो सबकी पूर्णता हो गई, श्रद्धा की, ज्ञान की और आचरण की। अब इस दृष्टांत को सात तत्वों पर घटाते हैं। इस विश्व में अनंत द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, अनंत गुणों से युक्त है, परंतु प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्ट है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल भाव से युक्त होने से मेरा इन द्रव्यों में प्रवेश नहीं हो सकता। मैं भी एक द्रव्य हूँ, अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ, मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ, मेरे स्वचतुष्टय में अन्य कोई प्रवेश कर नहीं सकता। चारों गतियों में भ्रमण कराने वाला संसार मार्ग है, जो जन्म मरणादि अनेक विपत्तियों से भरा पड़ा है, इससे हटकर एक मोक्ष मार्ग है जिस पर चलकर मैं मोक्ष महल में प्रवेश कर सकता हूँ, मार्ग छोड़कर अपने घर में निवास कर सकता हूँ, शास्त्रों से ऐसी जानकारी प्राप्त कर, ये तो जानकारी है, जब मैं अपने घर स्वद्रव्य की तरफ पहला कदम उठाकर मोक्ष मार्ग में आऊंगा अर्थात सम्यक प्राप्त करूंगा, तब से श्रद्धा, ज्ञान और आचरण सच्चे होंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इस मोक्ष मार्ग पर चलकर जब घर में प्रवेश करके वही रहने लगूंगा, परिपूर्ण सुख का उपभोग करूंगा, तभी श्रद्धा, ज्ञान और आचरण की पूर्णता होगी। इसके और भी बातें हम कल करेंगे, ये तो दृष्टांत के द्वारा तत्वों को समझाने का प्रयास है, बाकी बात कल करेंगे। बोलो 24 भगवान।